ये होने चाहिए, वो परफेक्ट लिए गए, उनकी बॉडी में किस तरह की मसाज जेल यूज़ करनी चाहिए। तो ये छोटी छोटी ऐसी बहुत सारे चेंजेस, सौयों चेंजेस उन्होंने किए और उनके माइंडसेट को परिवर्तन करने के लिए भी प्रयास किया। और इसका रिजल्ट ये निकला कि ये 2003 की बात है, अगले 5 सालों में ही 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स में 60% गोल्ड मेडल ब्रिटिश साइकिलिंग टीम को मिले। उसके बाद 2012 में जब लंदन ओलंपिक्स हुए तो उसके अंदर 9 ओलंपिक गोल्ड मेडल्स और 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स उनके नाम आए। गोल्ड मेडल्स तो और ज़्यादा थे, ओलंपिक रिकॉर्ड्स और 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। और 2017 तक टोटल उनके 178 वर्ल्ड चैम्पियनशिप के जीत चुके थे वो, और साथ साथ 66 ओलंपिक पैरालंपिक गोल्ड मेडल्स, और उसके साथ टूर द फ्रांस जो सबसे डिफ़िकल्ट चैम्पियनशिप मानी जाती है वो भी उन्होंने लगातार 5 बार जीत कर रिकॉर्ड बनाया। तो इतना बड़ा प्राप्ति जो हुई वो भी एक ऐसी टीम से जिसने पिछले 100 सालों की उनकी परफॉर्मेंस इतनी ख़राब थी, वो कैसे आई, वो छोटे छोटे चेंजेस करने से। तो यहाँ पर आज हम जो डिस्कस करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन भी एक ऐसी चीज़ है, इट इज़ अ स्किल, इट इज़ अ मसल जो ट्रेन करने से पावरफुल होती है। और वो ट्रेनिंग ऐसा नहीं है कि हमें योग के समय ही चाहिए। सारा दिन हमारी बुद्धि भटकती रहे और हम योग के समय उसे एकाग्र करना चाहें तो जैसे एक शैतान बच्चा सारे दिन उछल कूद मचाता है और उसको कहे तुम बैठ जाओ, 2 मिनट तो बैठेगा लेकिन फिर वो बंदर की तरह उछलता रहेगा। इसलिए दुनिया वालों ने तो मन को ही बंदर कह दिया है ना। लेकिन आज हम समझते हैं वो क्या चेंजेस हैं जो हम अपनी डेली पूरी दिनचर्या में लेकर आए, छोटे छोटे स्टेप्स। और इसका खास जो मैथ्स है वो मैं बताना चाहूँगी कि इतना बड़ा बदलाव कैसे आता है। मान लीजिए आज आप 1 नंबर पर हैं और रोज़ आप 1% अपने में चेंज लेकर आते हैं, तो आज का कितना हुआ आपका 1.01, 1% का। तो 1.01 अगर 1 साल तक आप रोज़
हेलो, एक जरूरी अनाउंसमेंट है। एक गाड़ी है MH47A8844, किसकी गाड़ी है बैठे हैं? MH47A8844 जिसकी भी गाड़ी हो कृपया यहाँ से हटाकर कहीं और पार्क कर दें। वहाँ क्रेन से काम चल रहा है तो वो क्रेन को मूव करने में थोड़ी डिस्टर्बेंस हो रही है, तो प्लीज़ ये जिसकी भी गाड़ी हो वहाँ से थोड़ा शिफ्ट करके कहीं और लगा दें। थैंक यू, सॉरी।
तो ये 1% इम्प्रूवमेंट का मैथ्स क्या है? बिल्कुल प्योर मैथ्स है, आप इसको सर्च भी कर सकते हैं कि अगर आज हमने 1 से शुरू किया और पूरे 1 साल तक हम रोज़ सिर्फ 1% ऐड ऑन करते चले गए तो बाय द एंड ऑफ 365 डेज आप 37 पर होंगे, 37 टाइम्स बेटर होंगे जो आप आज हैं, राइट? तो हमें स्कैटर्ड होके अपने पुरुषार्थ को नहीं करना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा उसमें परसिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे भले स्टेप्स छोटे हों लेकिन ऐसा नहीं, पेशेंस रखकर लगातार करते चले जाना है, जिसे आज भी बाबा ने मुरली में निरंतर शब्द कहा था। तो और इसके ऑपोजिट भी बिल्कुल ठीक है कि अगर हमने अलबेलाई करी, श्रीमत पर नहीं चले, कई बार हम जब ज्ञान में आते हैं तो बहुत फास्ट चलते हैं लेकिन फिर स्पीड थोड़ी थोड़ी हम स्लो हो जाती है, हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं कई सारी चीज़ों को। तो जब हम नहीं मानते हैं तो भी हम 1% जो हम माइनस होते चले जाते हैं तो साल के एंड तक लगभग 0 हो जाते हैं। तो इसलिए हम तो खैर स्पार्कलर्स हैं, यहाँ पर अपनी उन्नति करते ही रहते हैं और अब समझते हैं कि वो उन्नति कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमारी दिन की शुरुआत होती है अमृत वेला से, उसके बारे में मैं बाद में बात करूँगी। सेकेंड, हमारी जो धारणा है हमारी दिनचर्या में सबसे इम्पॉर्टेंट है मुरली। तो मुरली के लिए खास एक बात तो आज की मुरली में ही आ चुकी है कि मुरली जो है सेंटर पर सुननी चाहिए। आज के महावाक्य क्या कहते हैं, जब ज्ञानी तू आत्मा बच्चे इकट्ठे बैठकर मुरली सुनते हैं तो चारों तरफ शांति का वातावरण बन जाता है, क्योंकि वे कुछ भी महावाक्य सुनते हैं तो आंतरिक डीप चले जाते हैं, क्योंकि एक तो एनवायरनमेंट होता है ना। आप देखो, आपके बच्चे ऑनलाइन स्टडी करें और स्कूल में जाके स्टडी करें, हम सब अनुभवी हैं कि कितना डिफरेंस होता है। सेम अप्लाइज टू अस। हम ये नहीं कह सकते कि हमारी एकाग्रता बहुत अच्छी है, हमें भी एक वातावरण चाहिए, क्योंकि घर का वातावरण और सेंटर का वातावरण, ज़मीन आसमान का फर्क होता है ना। चाहे हम कितने ही ज्ञानी तो योगी बच्चे हैं, बट स्टिल ये मर्यादा बाबा की बनाई हुई है तो हमें फॉलो करना चाहिए। हाँ, कोई बहुत मजबूरी है तो एक अलग बात है। तो बाबा ने कहा चारों तरफ का शांति का वायुमंडल बन जाता है, क्योंकि वे कुछ भी महावाक्य सुनते हैं तो आंतरिक डीप चला जाता है, क्योंकि एकाग्रता का लेवल हाई होता है। डीप जाने के कारण आंतरिक उनको शांति की मीठी महसूसता होती है, अंदर जाती है बात। और जब हम कोई बात जैसे क्लिक करती है, उस टाइम हमारे ब्रेन के अंदर डीप जाने का मतलब ये है कि एक नेटवर्क, जो भी चीज़ हमें, जैसे कहते हैं ना, वो आज की मुरली ना मेरे लिए थी, ये पॉइंट मेरे लिए था, वो ऐसा क्लिक करता है कि एक साइंस है न्यूरोप्लास्टिसिटी, जिसके थ्रू जब भी ऐसा कुछ हमें डीप टच करता है तो हमारे ब्रेन में न्यूरल सर्किट्स बनते हैं जो हमें वो एब्जॉर्ब करने में और उसका स्वरूप बनने में हेल्प करते हैं। उसको हम समझेंगे अभी आगे, लेकिन मुरली से संबंधित कुछ बातें जो हमें कॉन्सेंट्रेशन डेवलप करने में हेल्प करेंगी। तो पहली बात, सेंटर पर मुरली सुने, टीचर के बैठने से पहले बैठें, योग में बैठें थोड़ी देर, जिससे कि हमारी बुद्धि तैयार हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं और बातें चलती हैं, उसको सेटल डाउन होने में टाइम लगता है, राइट। फिर मुरली सुनते समय हमारी आंखें जो हैं कहाँ होनी चाहिए, टीचर की तरफ होनी चाहिए। अभी कोई आया क्लास के अंदर, कोई गया, टीचर ने किसी को इशारे से कुछ कहा कुछ लाने के लिए, हम सबकी नज़रें कहाँ जाती हैं। तो ये खुद पर हमें कंट्रोल करना है, एटलीस्ट मुरली सुनते टाइम ये एक्सरसाइज कीजिए, अपनी आँखों को ये काम दीजिए कि मुझे सिर्फ स्टेज पर या जहाँ भी दीदी बैठे हैं वहाँ मुझे देखना है, मेरी आँख इधर से इधर बराबर वाली सीट पर नहीं जानी चाहिए। ये मतलब ये एक एक्सरसाइज है, काम दीजिए अपने आप को, कुछ भी हो जाए अनलेस मुझे वो सेवा दी गई है। हमें कोई सेवा नहीं दी गई, वो जो अंदर गेट से घुस रहे उनको कहाँ तक बिठाना है, लेकिन कई बार हमारी आंखें वहाँ तक जब तब तक जाती है जब तक वो व्यक्ति बैठ नहीं जाता, एज इफ कि हम ही सहयोग दे रहे हैं अपनी दृष्टि से कि उनको सीट कहाँ मिलेगी। या कोई क्या कर रहा है, मैं मुरली सुनने के लिए यहाँ किसके लिए आया हूँ, पर्पस, एम, राइट। ये एम देकर बैठना है, बहुत ज़रूरी है, नहीं देते अगर, और रोज़ देना है। हम सोचे हमारी एकाग्रता बहुत अच्छी है, नहीं, जहाँ हम एम नहीं देते वहीं फिसलती है, मैं खुद के अनुभव से ये बात कह रही हूँ। तो इसलिए रोज़ अपने को एम देना है कि मेरी दृष्टि कहाँ रहनी चाहिए। दूसरी बहुत इम्पॉर्टेंट बात, आज सुबह हमने मुरली सुनी, आप में से कितने दो तीन बार पहले ही पढ़ चुके थे, हाथ खड़ा कीजिए। कई बार यहाँ तो शायद कई बार हमें, हाँ, हम और रूटीन में लगे होते हैं, घर में हम पूरी मुरली पढ़कर आते हैं, तो मुरली सेंटर पे ही सुने, पहले से ना पढ़े, पहले से नोट्स बना के ना आए। कारण बताती हूँ इसका भी, साइंटिफिक कारण है। जब हम उस क्यूरियोसिटी से बैठते हैं, आज बाबा ने क्या कहा मेरे लिए, जब प्रश्न आता है और उसका उत्तर अंदर से कुछ चलता है, बहुत मज़ा आता है। उस मज़े को, उस आनंद को हम अपने आप को वो आनंद दे नहीं पाते जब हम पहले से पढ़ लेते हैं। वाकई, मतलब मेरा अनुभव है, मुझे बहुत क्यूरियोसिटी रहती है आज बाबा ने मुरली में क्या कहा। कभी नहीं, पहली रात भी नहीं पढ़ते, पहले भी नहीं पढ़ते, सेंटर जाते हुए भी नहीं पढ़ते, वहीं पढ़ते हैं, बुद्धि चलती है। साइंटिफिक रीज़न ये है कि हमारा ब्रेन में एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है डोपामीन, एंटिसिपेशन हार्मोन है, वो एंटिसिपेट करता है अब क्या होने वाला है, राइट। तो वो उससे वो रिलीज होता है। तो जब मेरे अंदर वो क्यूरियोसिटी है मुरली सुनते टाइम, अब इसका आंसर क्या होगा, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, बाबा क्या कहेगा। तो इससे हमारा हार्मोन भी इंक्रीज होता है, डोपामिन, जो हमें गुड फील कराता है। हाँ, कई बार होता है आपके साथ हुआ होगा, आपने अमृत वेला कोई संकल्प किया और वही स्वमान मुरली में आता है कि आज ही मैंने ये संकल्प किया। आपको नहीं पता आपके ब्रेन में उस टाइम क्या चेंजेस हो रहे हैं, राइट। तो वो हमें मेंटेन रखने हैं, ख़त्म नहीं करने उन हॉर्मोन्स को, उनको निकालना है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है वो क्यूरियोसिटी बनी रहे, वो इंटरेस्ट बना रहे मुरली के प्रति, राइट। तो ये मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुरली पहले से पढ़कर नहीं आइए। टीचर जब मुरली सुना रही है, मोबाइल खोल के टैली मत कीजिए, बहुत करते हैं ये, प्लीज़ टैली नहीं कीजिए, मोबाइल नहीं खोलिए उस टाइम पर। आपका कुछ मिस हो गया है, मेरा भी आज एक पॉइंट मिस हो गया था, तो मैंने वहाँ डॉट डॉट लगा के एक लाइन छोड़ दी कि इसको बाद में जाके, और उसके बाद की लाइन तुरंत लिखी, ध्यान रहे कहाँ मिस हुआ ये मेरे पॉइंट, मुझे वो नोट करनी थी, बाकी सारे पॉइंट्स नोट करें। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो हम, मैंने खुद से ये देखा, खोल के जब हम देखते हैं तो उसमें हम बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और जो सामने मुरली चल रही है उससे कट ऑफ हो जाते हैं। वापस उस अटेंशन को लाने में, इसमें एक तो हमारी एनर्जी बहुत ज़्यादा लगती है और हमारा अटेंशन शिफ्ट होने से हमारी मुरली मिस हो जाती है, एफर्ट ज़्यादा लगता है, प्राप्ति कम होती है, बहुत सारे नुकसान हैं। तो मत खोलिए मोबाइल को, मत सोचिए जो टीचर पढ़ रही है इसमें भी हम पढ़ें, रिटेंशन कम हो जाती है। ये भी देखा गया है, ये हमने अपने बड़ों से इस बात को सुना, अनुभव भी किया, कि जो मुरली सामने खोल के पढ़ते हैं उनसे पूछा जाए तो बाद में उन्हें मुरली याद नहीं होती उतनी जितना जो ध्यान से सुनकर नोट्स बना रहे होते हैं उनको ध्यान रहती है, ठीक है। तो ये पूरा साइंटिफिक है सब कुछ। नेक्स्ट चीज़ मैं कहूँगी कि मुरली सुनते टाइम बहुत बार हमें सेवा के कुछ ख्याल आ जाते हैं, है ना, ये पॉइंट सेवा के लिए बहुत अच्छा है, उस टाइम बुद्धि चलती है। लेकिन अगर बुद्धि उधर चली गई तो ये यहाँ के महावाक्य मिस हो जाएंगे। तो मैंने क्या रूल बनाया इसके लिए, मुझे भी कई बार बहुत पॉइंट्स आते हैं, तो मैं जैसे ही कोई पॉइंट आता है तो उसको दो शब्दों में डायरी के बैक पर उसको लिख लेती हूँ, क्योंकि कोई एग्जाम्पल याद आता है या कोई ऐसी बात याद आती है, हाँ आज को जो आज जो क्लास देनी है ये उसमें ही अच्छा रहेगा। तो बट उसको हमें उसके डेप्थ में नहीं जाना, दो शब्द लिख के, जिससे मुझे मुरली के बाद जब मैं चिंतन करूँ तो वो पॉइंट मुझे याद आ जाएगा अगर मैंने उसका थोड़ा हिंट लिखा है तो। बट डोंट गो इन टू डीप, हम कई बार सोचते ये भी तो बाबा की सेवा है, बाबा के साथ ही योग है, मुरली मिस हो रही है, ठीक है। और हाँ, तो और एक और खास इम्पॉर्टेंट बात कि मुरली सुनने के बाद पॉइंट्स को जब हम योग में बैठते हैं, कोई एक या दो पॉइंट आप उठा लीजिए और उसको बस ऐसे देखिए, वरदान रूप में बाबा ने मुझे दे दिया। क्योंकि ये भी मेरा अनुभव है कि जब कई बार क्लास में मुरली बहुत ध्यान से सुनी, लेकिन जब वहाँ से निकलते हैं, घर के लिए सब्जी खरीदते हैं, कुछ और काम करते हैं, फ़ोन पे बात करते हैं, आके काम में लग जाते हैं, 11-12 बजे जब टाइम मिलता है, आधी से ज़्यादा मुरली स्किप हो चुकी होती है, ध्यान कुछ भी नहीं रहता जबकि ध्यान से सुनी थी। इट्स इम्पॉर्टेंट कि कुछ अंदर चर्निंग के लिए उठा ले एक या दो पॉइंट और उसको काम करते करते चर्न करते रहें, तो आपकी जैसे एक निरंतर याद भी बनी रहेगी और बुद्धि व्यर्थ में नहीं जाएगी, मुरली भूलेंगे नहीं, बाबा की श्रीमत फॉलो होगी, ठीक है। तो ये तो बात रही कुछ मुरली की। दूसरी बात पर हम आते हैं, ये है कि हमारी दिनचर्या सारे दिन की। तो दिनचर्या के लिए जैसे कहा कि मुरली के एक दो पॉइंट्स, वरदान, कुछ भी चलते फिरते महसूस होता रहे जो हमें, क्योंकि ये जो महसूस होता है, जैसे कल की मुरली में था बाबा के साथ का, तो हर टाइम जैसे चाय पी रहे हैं तो, चल रहे हैं तो, बस एक पॉइंट ही चाय ले लिया, तो वो उससे क्या होता है, हमारे अनुभव तो अच्छे होते ही हैं, साथ में अगेन हमारा ब्रेन जो है उसके अंदर रीवायरिंग चलती जा रही है कंटिन्यूस। नहीं तो क्या होता है, सुबह एक रास्ता बनाया हमने, क्लियर हुआ, लेकिन सारे दिन में जो फॉगी आ जाती है तो वो बाद में जब उसको इम्प्लीमेंट करने का टाइम आता है हम भूल जाते हैं, राइट। अच्छा, दूसरी चीज़ जो मैं इम्पोर्टेंट ध्यान खिंचवाना चाहती हूँ कि हमारे पास ये मोबाइल है ना, जिसको हम ज्ञान योग के लिए यूज़ करते हैं, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, बाकी तो सब हम अपने पुरुषार्थ के लिए ही करते हैं जो करते हैं। अभी रिसेंटली 50 डेज फोकस चैलेंज डिजिटल वेलनेस हमने शुरू किया, अभी उसके 42 डेज हो चुके हैं। तो मुझे कई उसमें बाबा के बच्चे भी जुड़े, बाहर के भी, लौकिक के भी जुड़े, तो बाबा के बच्चों ने मुझसे कहा, मैंने कहा पहला टास्क दिया कि अपना स्क्रीन टाइम चेक करिए, तो मुझे दो दिन बाद कई भाई बहनों ने कहा दीदी हमारा 8-9 घंटे तो है, आप भी चेक करिएगा, उसमें एक डिजिटल वेलबींग ऐप होती है, आपका रोज़ का आएगा, आप चेक करना। अच्छे अच्छे बच्चों का 8-9 घंटे था, और किसी किसी ने कहा दीदी लेकिन किसी दिन क्लासेस अगर ज़्यादा होती हैं, कोई भट्टी होती है, तो 12 घंटे भी हो जाता है। चाहे आप बाबा का ही ज्ञान ले रहे हैं, लेकिन
अभी मैंने जो अनाउंसमेंट किया था गाड़ी के लिए, MH 47 8 8 4, किसकी गाड़ी है यहाँ पे किसी को पता है ये किसकी गाड़ी है? क्योंकि उस गाड़ी के कारण क्रेन का काम थोड़ा रुका हुआ है, क्रेन वहाँ तक जा नहीं पा रहा है। अगर किसी को पता हो कि किसकी गाड़ी है तो कृपया फ़ोन करके उन्हें बता दें, शायद वो भाई या बहन जिसकी भी गाड़ी है वो हॉल में नहीं है। ओके,
तो चाहे हम बाबा के बच्चे इधर उधर बुद्धि नहीं भटकाते हैं, बाबा की क्लासेस ही सुनते हैं, लेकिन हमारे बड़े भी कहते हैं इस बात को, और साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि अगर हम भोजन भी, पौष्टिक भोजन भी खाते ही रहें और पचाए नहीं उसको, तो पचाना भी बहुत ज़रूरी है अगर उसको शक्ति बनाना चाहते हैं। तो कई बार हम क्या करते हैं, एक क्लास के बाद दूसरी के बाद तीसरी के बाद चौथी, काम करते रहते हैं, कान में ईयरबड्स लगे रहते हैं और हम लगे रहते हैं और ये सोचते हैं कि हमारा अच्छा है, कुछ अच्छा ही अंदर जा रहा है, लेकिन चर्निंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। बाबा ने कहा कि दो दिन पहले कहा था ना कि अगर गाय जुगाली ना करे तो समझा जाता है बीमार है। तो चर्निंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। मुरली सुनिए, अव्यक्त मुरली सुनिए, एक क्लास और करिए, लेकिन उसके बीच में गैप भी हो। और चर्निंग बहुत ज़रूरी है। मैंने अपने आप को ये काम दे रखा है, क्योंकि अच्छा तो लगता ही है अच्छी बातें सुनते रहना, तो मैंने अपने आप को काम दे रखा है कि ये क्लास मैंने सुनी, जब तक इसके नोट्स नहीं बनाऊंगी या किसी को इसके कुछ पॉइंट्स नहीं सुनाऊंगी, दूसरी क्लास नहीं सुनूंगी। तो वो चर्निंग से क्या होता है, वो अंदर जाती है बात। नहीं तो जैसे लौकिक लोग एक के बाद एक रील देखते रहते हैं, वीडियो देखते रहते हैं, स्टे कुछ नहीं करता, ऐसे हमारे साथ भी स्टे नहीं करता। तो चर्निंग इज़ इम्पॉर्टेंट, तो उसको अपना ज़रूर देखें, टू मच में नहीं जाएं, करें ले, क्योंकि हम बाद में आए हैं काफ़ी हम में से, तो हमें बहुत सारा सिलेबस पूरा करना है। लेकिन अगर बच्चा पढ़ता ही रहे और रिविज़न ना करे उसका, है ना, तो डैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो अपने स्क्रीन टाइम को भी लिमिट करें। और इससे डेफिनेटली, यहाँ मैं ये सब नहीं शेयर कर रही, लेकिन हम सबको पता है सारा दिन कान में लगाए रखने से भी एक हमारे ब्रेन में जो वो वेव्स जाती है वो नुकसान देती है, हमारे ब्रेन के लिए भी नुकसानदायक। तो मैं आप सबसे कहूँगी, अब जैसे यहाँ पर टेक्नोलॉजी देखिए हमारी भलाई के लिए बनी है, हमारे लिए बनी है। आज टेक्नोलॉजी से इस प्रोग्राम को भी कितने लोग घर बैठे देख पा रहे हैं, भाई बहन, टेक्नोलॉजी से हम ये जो 5 प्रोजेक्ट्स हैं इनके साथ जुड़ेंगे। तो टेक्नोलॉजी इज़ वेरी गुड कि हम घर बैठे वो पुरुषार्थ कर सकते हैं, लेकिन उसको समझदारी से यूज़ करना। हम एक प्रोजेक्ट के साथ जुड़े, कई बार हम सारे प्रोजेक्ट्स के साथ जुड़ के अभी एक क्लास, फिर दूसरी क्लास, फिर तीसरी क्लास, तो एक में लगकर पुरुषार्थ करें। क्योंकि जो भी हमारे टीम्स हैं, जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, बड़े स्ट्रक्चर्ड वे से, बहुत सुंदर तरीके से मेहनत करके हमारे लिए प्रोग्राम निकालते हैं, तो उस पर हम चलें, वो भी देखें जो कुछ मटेरियल हमें मिलता है, बट टू मच में नहीं जाएं, इधर भी उधर भी ऐसे वो नहीं करें। फिर तीसरी बात आती है कि जब दिन भर हम अपने आप को डिसिप्लिन में रखेंगे, भटकने नहीं देंगे, इसमें है तो बहुत सारी बातें खान पान की, एक भोजन खाते टाइम भी प्लीज़, कई बाबा के बच्चे मुझे कहते हैं हम क्लास सुन के भोजन खाते हैं, क्लास सुनते हुए भोजन नहीं खाएं, भोजन खाते टाइम बाबा की जो श्रीमत है कि मेरे साथ बैठ के, तीसरा नहीं कोई चाहिए, मैं और बाबा। बाकी भले परिवार के साथ बैठें वो एक अलग बात है, ऐसा नहीं कि हम अलग होके बैठ रहे हैं, लेकिन बाबा की याद में खाएं बस। फिर तीसरी बात आती है कि जब ये सब होगा तो मेरा सुबह का योग भी अच्छा लगेगा, या जिस भी टाइम हम बाबा से जुड़ना चाहेंगे, क्योंकि बुद्धि पर हमारा अटेंशन सारा दिन चल रहा है, सारा दिन चल रहा है। तो बाबा ने आज की मुरली में जो कहा, तुम बच्चे जब सवेरे सवेरे उठकर एकांत में बैठते हो तो शुद्ध विचारों रूपी लहरें उत्पन्न होती हैं। हमारे विचार से जो तरंगे निकलती हैं, जितना हमारा विचार शुद्ध होगा, है ना, जितना श्रेष्ठ होगा, उतनी उसकी वाइब्रेशन स्ट्रांग होंगी। उस विचार में शुद्ध और श्रेष्ठ विचार का क्या मतलब है, जिसमें निश्चय है, कन्विक्शन है ना, हम जो सोच रहे हैं वो उसमें हमारा पूरा 100% फेथ है, उस समय बहुत उपराम अवस्था होनी चाहिए। फिर अपने निज शुद्ध संकल्प में स्थित होने से अन्य सब संकल्प आपे ही शांत हो जाएंगे और मन अमन हो जाएगा, क्योंकि मन को वश करने अर्थ भी कोई ताकत तो अवश्य चाहिए, निश्चय की ताकत चाहिए, दृढ़ता की ताकत चाहिए और एकाग्रता की ताकत चाहिए। इसलिए पहले वेरी इंपॉर्टेंट, जो आज बाबा की मुरली ना बहुत ही, जैसे आशा दीदी कह रहे थे, बहुत पावरफुल है, बार बार पढ़नी चाहिए। देखिए दीदी ने कहा बार बार पढ़नी चाहिए, बार बार सुननी नहीं चाहिए, है ना, एक बार सुन ली उसके बाद खुद पढ़नी चाहिए। तो पहले अपने, ये ताकत कब आएगी, पहले अपने लक्ष्य स्वरूप के शुद्ध संकल्प को धारण करो। लक्ष्य हर समय का क्लियर होना चाहिए, सिर्फ योग में बैठने का नहीं। जब आंतरिक बुद्धि योग कायदे प्रमाण होगा, जिसको दीदी ने आज कहा था कि इस पे आप चिंतन कीजिएगा, बुद्धि कायदे प्रमाण होगी तो तुम्हारी ये निरसंकल्प अवस्था स्वतः हो जाएगी। जब उस बुद्धि में कोई डाउट नहीं है, निश्चय बुद्धि है, स्वयं पर, बाप पर, ड्रामा पर निश्चय बुद्धि है, तो हमारे संकल्प बहुत शुद्ध होंगे। और संकल्पों में शुद्धता जितनी ज़्यादा होगी उतनी उसमें सिद्धि होगी। तो इस स्टेज को कैसे लेकर आना, इस ताकत को कैसे भरना है, तो थोड़ा सा साइंटिफिक वे से हम समझते हैं मेडिटेशन और ब्रेन इसमें क्या संबंध है। तो हमारे ब्रेन में कुछ, उसको हम कह सकते हैं कि हमारा ब्रेन किस गति से चल रहा है, थॉट्स पैटर्न जो हैं उसको हम एक फ्रीक्वेंसी से मेजर करते हैं। आप में से तो स्पार्कलर्स हैं, सब जानते भी हैं। सबसे अवेक स्थिति जो होती है वो होती है बीटा, फिर मैं इसके डिटेल में नहीं जा रही, शॉर्ट में बता रही हूँ। फिर उससे जो रिलैक्स्ड होती है ना, जो जहाँ पर हम मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ अल्फा स्टेज, तो वो हमारी उस समय फ्रीक्वेंसी थॉट्स की कम हो जाती है। थीटा और डीप रिलैक्सेशन, डेल्टा बिल्कुल शांत अवस्था जो हम नींद में प्राप्त करते हैं। अब बीटा अवस्था, जिस अवस्था में आप सब बैठे हैं इस टाइम, है ना, जहाँ पर प्लानिंग चल रही है, और मतलब ये अलग अलग स्टेजेस हो सकते हैं। जब हम मल्टीटास्किंग कर रहे हैं तो अब हाई बीटा में हैं, चिंता फिक्र कर रहे हैं, थॉट्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो हाई बीटा में हैं। अब बीटा से अल्फा में आना, क्योंकि अब मेडिटेशन का ये प्रोसेस है, एकदम से नहीं सोचना चाहिए मैं परमधाम में जाऊँ। देखिए दो चीज़ें होती हैं जो मैं अपने चर्निंग से बता रही हूँ, बड़े सही भी करें मुझे। एक कंट्रोलिंग पावर बाबा ने कहा, एक रूलिंग पावर कहा, है ना। तो मैं समझती हूँ रूलिंग पावर मतलब राजा बनकर मन बुद्धि को ऑर्डर करना, है ना। तो मन बुद्धि को ऑर्डर करना मतलब आत्मा, जिसको बाबा ड्रिल कहते हैं, ऑर्डर करो अभी अपने मन को कि एक सेकेंड में परमधाम निवासी बन जाओ, एक सेकेंड में सूक्ष्म वतन वासी बन जाओ, एक सेकेंड में कर्म योगी स्थिति में आ जाओ। तो ये है रूलिंग पावर। एक है कंट्रोलिंग पावर। कंट्रोलिंग पावर मतलब जिस स्थिति में आप चाहो उतनी देर अपने मन को स्थित कर सको, कंट्रोल कर सको। जैसे एक हवाई जहाज चलाने वाला पायलट जो होता है, बड़ी कंट्रोलिंग पावर चाहिए उसके अंदर। जब से वो एयरक्राफ्ट को लेकर चलता है, उड़ान भरने तक और लैंडिंग करने तक, उसका एक एक सेकंड पे कंट्रोल रहना चाहिए, नहीं तो एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये मेडिटेशन भी इसी रीति है। इसको इस एनालॉजी से मैं कनेक्ट कर रही हूँ कि जैसे एयरक्राफ्ट में आप देखते होंगे वो पार्किंग में होता है, पार्किंग से लेकर वो धीरे 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 उस जगह पर आता है जहाँ से उसको उड़ान भरनी होती है, अपनी उड़ने की पोजिशन पर आता है। उसके बाद वो बहुत लंबे रनवे पर जाता है, और रनवे पर भी जाके फिर फ्लाइट ऐसे ऊपर को जाती है, और फिर ऊपर बिल्कुल बादलों से ऊपर जाके एक सिचुएशन ऐसी होती है जब आपको ये भी नहीं लगता कि ये उड़ रहा है प्लेन, बिल्कुल स्टिल हो जाता है। जबकि उस टाइम उसकी स्पीड बहुत तेज होती है, लेकिन वो बिल्कुल स्टिल हो जाता है, अनलेस कोई मौसम की गड़बड़ ना हो तो, राइट। तो कहने का भाव ये है, यही स्टेजेस हैं हमारे मन की, ब्रेन वेव्स की। जब मन शुरू में अल्फा में बीटा में चल रहा है, बीटा से अल्फा में लाने का मतलब है उसको बाहर मुक्ता से अंतर मुक्ता में लेकर आना, जो हमारी बहनें कमेंट्री से कराती भी हैं कि हम अपने शरीर, पहले हम डीप सांस लेते हैं, गहरी सांस लेके शरीर को रिलैक्स करते हैं, रिलैक्सेशन के बाद फिर हम आत्मा पर एकाग्र करते हैं, सारा ध्यान उधर लेकर जाते हैं। ये है बीटा से अल्फा में आना, स्लो डाउन होना, सांसों को भी स्लो डाउन करना और अपने बुद्धि को भी स्लो डाउन करना, थॉट्स कम करना। फिर अल्फा से थीटा में जाना, ये वो है जैसे रनवे पे चलना, मतलब आत्मिक स्मृति को पक्का करना। जैसे आज भी दीदी कह रहे थे, डेफिनेशन की बात हो रही थी कल शाम को, कि या राजयोग की हमारी डेफिनेशन क्या है, बुद्धि को सब तरफ से हटा के, देह देह सहित देह के सब धर्मों से हटाकर स्वयं को आत्मा निश्चय करना। तो वो जो रनवे है आत्मिक स्मृति का चिंतन, आत्मिक चिंतन, और फिर उसके बाद जब फ्लाइट उड़ने लगती है तो आपको महसूस होता है, आपने देखा होगा फ्लाइट में बैठोगे बॉडी में महसूस होता है। यहाँ बॉडी की बात नहीं है, यहाँ आत्मा की बात है। आत्मा को वो हल्कापन महसूस होगा, मैं उड़ चली। और फिर ऊपर जाके एक स्टेज आती है जिस स्टेज पे हम स्टिल हो जाते हैं, भले हम बहुत ज़्यादा देर स्टिल नहीं रह पाते, ये प्रैक्टिस की बात है। जितनी प्रैक्टिस होती जाएगी हमारी वो स्टेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। इसके लिए हमें बहुत पेशेंटली काम करना है, और दोनों तरह की ड्रिल भी ज़रूरी है रूलिंग पावर के लिए, और अपनी स्थिति को एक जगह बनाए रखना लंबे समय तक वो भी ज़रूरी है कंट्रोलिंग पावर लाने के लिए। ये धीरे धीरे बिल्डअप होती है। तो जब हम उस स्टेज पर होते हैं, अल्टीमेट स्टेज पर, तो हमारे बॉडी के अंदर इंटरनली न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं, डोपामिन, सेरोटोनिन, गावा, एंडोर्फिन्स। हाँ, मैं शॉर्ट में ही इसको कंप्लीट करती हूँ, डोपामिन जो प्लेजर हार्मोन है, इसीलिए आप देखो मेडिटेशन के दौरान वो बढ़ता है। कई बार कहते हैं ब्रह्मा कुमारी इसका जादू लग गया, कि जो स्मोकर्स होते हैं, एडिक्शन में होते हैं किसी प्रकार की, छूट जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ आके जब उस सच्चे आनंद का महसूसता होती है तो वो ऑटोमेटिकली छूट जाती है, छोड़नी नहीं पड़ती है ना। तो क्यों? क्योंकि वो नेचुरल डोपामीन हमारी बॉडी में रिलीज होना शुरू हो जाता है। सेरोटोनिन जो है वो हमारे मूड को स्टेबलाइज करता है, नींद को बेटर करता है। बहुतों के अनुभव है राजयोगा मेडिटेशन करते करते ही लोगों की नींद इम्प्रूव होने लगती है, कोर्स करते करते ही। बात की तो बात की बात है, कोर्स करते करते बहनों का अनुभव होगा, कई कहते हैं हाँ कि हाँ दो दिन के उससे हमें नींद अच्छी आने लग गई। गाबा विच एक्ट्स एज अ ब्रेक ऑन एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस, एंड एंडोर्फिन्स जो नेचुरल पेन किलर्स होते हैं, जो हमें डीप फोकस में रिलीज होते हैं, एक्सरसाइज के टाइम रिलीज होते हैं, ये भी मेडिटेशन के दौरान हमारे रिलीज होते हैं। तो ये ब्रेन साइंस है। अब इसको प्राप्त करने के लिए जो बाबा हमें सिखाते हैं कैसे हम इस स्थिति को प्राप्त करें, तो ये आध्यात्मिक जर्नी जो आत्मा की है, इसके लिए दो फैकल्टीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मन और बुद्धि, है ना। मन बुद्धि की एकाग्रता की हम बात करते हैं, तो इसके अंदर मन का काम जो है बहुत इंटरेस्टिंग है, कि मन के पास दो शक्तियां हैं, एक तो टाइम बैरियर नहीं है और डिस्टेंस बैरियर नहीं है। पीछे कितना भी जा सकते हैं, आगे कितना भी जा सकते हैं, डिस्टेंस बैरियर भी नहीं है। लंदन अमेरिका तो क्या, बाबा ने तो परम धाम भी पहुँचा दिया हमको, तो है ना, एक सेकंड में हमारा मन कहीं भी जा सकता है। ये मन की शक्ति है, और बुद्धि की शक्ति है कि वो पिक्चर बनाती है जो उसके अंदर होता है, जो मेमोरी बैंक में है। अगर कुछ मेमोरी बैंक में नहीं है, अब मैं आपसे जैसे अभी बोलूं कि एक शब्द है सोलानम लिकोपर्सिकम, इसके बारे में सोचिए, सोलानम लिकोपर्सिकम, कुछ आया पिक्चर? कुछ नहीं आया। लेकिन अगर मैं आपसे कहती हूँ टमाटर, इसके बारे में सोचिए, कहते ही पिक्चर आ गई, है ना, राइट? क्योंकि टमाटर हमारी मेमोरी बैंक में था, बुद्धि को ज़्यादा चलाना नहीं पड़ा, लेकिन उसके लिए जैसे वो कहते हैं सर्चिंग, सिग्नल ही नहीं मिल रहा है, तो वो सिग्नल ही नहीं मिला क्योंकि वो फीड नहीं है यहाँ पर, राइट? तो पहले बाबा को जानने से पहले हम भी भटक रहे थे जैसे दुनिया भटक रही है, लेकिन अभी बाबा ने बताया तुम्हारा स्वरूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, तुम्हारा घर कैसा है, तुम पहले क्या थे, तुम आगे क्या बनोगे, फरिश्ता स्वरूप, हर चीज़ की डेप्थ बताई है। और आज तो मीडिया के वजह से, ग्राफिक्स के वजह से सब कुछ हमें क्लैरिटी है। तो जब हम अपनी बुद्धि के अंदर, अब ये जो नई दुनिया के लिए नया ज्ञान, इसलिए हम बच्चे एकाग्र हो सकते हैं, बिकॉज वी नो कि क्या चीज़ कैसे है, राइट? तो हमें सब कुछ मालूम है उसके बारे में। तो मन से संकल्प करें, बुद्धि से विजुलाइज करें, दोनों की जब एकाग्रता होती है, दोनों जब सिंक्रोनाइज करते हैं, तो हमारी जो मेडिटेशन में एकाग्रता आती है। और वो एकाग्र स्टेज होती है जिस समय हम उस स्थिति को अनुभव करते हैं एकाग्रता की, वो पराकाष्ठा में जब हम पहुंचते हैं, तो हमारे संस्कार परिवर्तन होते हैं, हमारे विकर्म विनाश होते हैं। इसके ऊपर हमारे कनिष्ठ भाई ने स्टडी भी करी है, ईईजी पैटर्न्स को जब उन्होंने चेक किया, तो देखा कि हम बच्चों की जो राजयोग में सीड स्टेज हैं, जो उसकी प्रैक्टिस अच्छी करते हैं, उनके ब्रेन में एक अलग तरह का पैटर्न बनता है बाकी मेडिटेटर्स के कंपैरिजन में, जो और मेडिटेशंस होती हैं। तो हमारे इस स्थिति को पाने के लिए तीन स्टेजेस हैं, विजुअलाइजेशन, रियलाइजेशन, एक्चुअलाइजेशन। अब इस पे हमें थोड़ा मेहनत करनी है, लेकिन बाबा कहते हैं सहज है, तो सहज रूप से ही इसको स्वीकार करते हुए कि मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा, है ना, बाबा करा रहा है, मुझे बस बैठना है। विजुलाइज कीजिए, जो आप अपने को विजुलाइज करेंगे, बाबा कहते हैं आपके लिए वो सीट फिक्स हो जाएगी। जैसा, सिर्फ विजुलाइज नहीं करना, ये भी एक साइंस मैं बताती हूँ। दो तीन ग्रुप्स बनाए गए, एक ग्रुप कंट्रोल ग्रुप था, एक ग्रुप को कहा गया कि आपको अपना लक्ष्य देखना है, इतने मार्क्स स्कोर करने हैं, बस अपनी रिपोर्ट कार्ड देखो, और एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को कहा गया कि आपको रिपोर्ट कार्ड भी देखनी है और साथ में आपको अपने आप को प्रैक्टिस करते हुए भी देखना है। तो रिजल्ट ये आया कंट्रोल ग्रुप का, तो नॉर्मल था ही, जो जिन्होंने विजुलाइजेशन के साथ साथ अपने उसको भी विजुलाइज किया, केवल रिजल्ट को नहीं लेकिन प्रोसेस को भी, उनका जो परसेंटेज था वो कई गुना ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू जिन्होंने सिर्फ अपनी रिपोर्ट कार्ड को विजुलाइज किया। तो हमें उस प्रोसेस को भी विजुलाइज करना है. इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं लौकिक दुनिया में भी कि जहाँ प्रोसेस को विजुलाइज किया वहाँ पर बहुत रिजल्ट काफ़ी गुना का फास्टर आया, क्योंकि उस प्रोसेस को देखने से उसके पीछे की साइंस जो है वो है चित्र से चरित्र बनता है, स्मृति से स्थिति बनती है. स्मृति मन की और चित्र बुद्धि में. तो उससे हमारी जो एकाग्रता बनती है उससे हमारे ब्रेन में न्यूरोप्लास्टिसिटी बन जो डेवलप होती है, हमारे संस्कारों के अंदर परिवर्तन आता है. व्हाट इज साइंस ऑफ विजुलाइजेशन? जैसे मैंने अभी ये स्टडी बताई, जैसे जैसे हम कुछ विजुलाइज करते हैं हमारे ब्रेन में वो उस प्रकार के पाथवेज बन जाते हैं. जितना उन पाथवेज को हम बार बार विजुलाइज करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, वो स्ट्रांग होते जाते हैं और इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि जब हम एक्चुअल में उस काम को करते हैं तो हमारे लिए वो काम करना आसान होता है, क्योंकि हमारे ब्रेन के अंदर पहले ही वो स्ट्रक्चर बन चुका है. अमृत वेला के योग में हम अपने सारे दिन की दिनचर्या हमें कैसी चाहिए. कई बार मेरा शेड्यूल बहुत टाइट होता है और ऐसा लगता है ये सारे काम नहीं हो सकते. मैं सुबह सुबह अपने को प्रोग्राम कर देती हूँ, हज़ार बुझाओं वाला पिता मेरे साथ है, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, मेरा हर काम समय से पहले हो रहा है, समय से पहले पूरा हो रहा है, पूरे निश्चय के साथ, और फिर लग जाना काम में. तो मैंने देखा है कि कई बार सचमुच में कुछ शॉर्टकट्स मिल जाते हैं, कोई सहयोगी आ जाते हैं, कोई और काम बीच में से अपने आप ही कैंसिल हो जाता है, काम हो जाते हैं, हो जाते हैं. तो छोटा सा एग्जाम्पल मैंने दिया, लेकिन इसको हम अमृत वेला को अपनी दिनचर्या के लिए भी, अपनी सेवाओं के लिए भी, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपने स्वरूप के लिए, जो बाबा कहते हैं एम्पावरमेंट ऑफ द सोल, हमारे जो पांच स्वरूप हैं स्थिर हो जाएं उसके अंदर, चाहे एक मिनट के लिए. बहुत लंबी बात नहीं करनी है, लेकिन बहुत ठीक है दीदी आ गए, बस मैं इसको पूरा करती हूँ. तो बहुत लंबा पुरुषार्थ नहीं, जो हमने शुरू में बात करी 1% चेंज, छोटा सा चेंज लाना है दिन भर में, बीच बीच में बस बीज डाला, अनुभव किया, वापस, जो बाबा कहते हैं छोटी छोटी ड्रिल्स हमको करनी है. और इसके पीछे साइंस क्या है, ब्रेन कैन नॉट डिफरेंशिएट, ब्रेन को नहीं पता लगता कि ये हम असली में कर रहे हैं या सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं. तो सिर्फ हमारी संकल्प को जब हम डीपली विजुलाइज करते हैं तो हमारा ब्रेन हमको सपोर्ट करता है. इस साइंस को जब मुझे पता लगा तो वाकई ही इम्पॉसिबल चीज़ें पॉसिबल हो पाई लाइफ के अंदर. सो इसलिए इस मन को ट्रेन करना ये हमारे हाथ में है, लेकिन बहुत प्यार से ट्रेन होगा. थोड़े दिन पहले बाबा ने मुरली में कहा था कि वो तो शेर को, बंदर को, सबको ट्रेन कर लेते हैं दुनिया के लोग, और हम अपने मन को नहीं कर सकते. कर सकते हैं ना, हम तो बहुत शक्तिशाली सर्वशक्तिवान के बच्चे हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान. तो इस रूप से रोज़ के अभ्यास से हमारे अंदर ज़रूर बहुत अच्छी एकाग्रता विकसित होगी. पता नहीं लगेगा, लेकिन अचानक एक दिन, जैसे कहते हैं वेट रिड्यूस कर रहे हैं, 10 दिन कुछ भी वज़न कम नहीं होता, 20 दिन कुछ नहीं होता, अचानक लगता है आधा किलो कम हो गया. इसी तरीके से हमारी एकाग्रता की शक्ति बढ़ती चली जाएगी. ओम शांति.